मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 10 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे ट्रंपवाद इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना और आज अखबारों में भी दिया हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है कि वो अभी जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार में स्थानीय वस्तुएं खरीदें। मुझे लगता है कि ये अपील बहुत ज्यादा मायने रखती है। इस अपील को कुछ लोग एक तरह से वैश्विकवाद के विरोध में भी समझते हैं कि अगर हम अपने स्थानीय वस्तुओं को इतना महत्व देने लगेंगे तो फिर वैश्विक बाजार का क्या होगा। लेकिन आप इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है शायद उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना ने खासकर जो हमारे बिल्कुल कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, इनकी कमर तोड़ दी है, बुरी तरह से तोड़ दी है। तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे की जो अपील है वो कहीं ना कहीं इन उद्योगों के रीढ़ की हड्डी को एक बार फिर से मजबूत बनाने के दिशा में किया गया एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि हमें इसे पालन भी करना चाहिए, हमें इसे अपने आचरण में लाना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि जो 15वां वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आप जानते हैं कि एनके सिंह जो IAS ऑफिसर्स हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है ये राष्ट्रपति को सौंपी है। यहां मैं आप सबसे थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, अखबारों में छप गई है ये सूचना कि 15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। आप पढ़ते हैं और मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क इस मायने में कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए, या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं फिर आपको मालूम होगा ही कि वित्त आयोग अपने आप में कितना ज्यादा मायने रखता है। तो जब आपको मालूम है कि ये मायने रखता है तो आपको उस न्यूज को बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए और बहुत इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए। और जब आप उसे पढ़ और सुन लें तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि एक बार हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लें या उस पर कम से कम एक नजर तो मार लें। जब आप नजर मारेंगे तो और भी ऐसी ढेर सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी जो अदरवाइज अखबारों में नहीं छपेंगी, क्योंकि अखबार वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। अखबार वालों को तो जो बताना था वो बता दिया, लेकिन आपको कुछ उससे अधिक जानना है। जब आप अपने नोट्स देखेंगे या इससे रिलेटेड चैप्टर पर जाएंगे तब आपको सबसे पहली बात तो यही पता लगेगा कि इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी, और ये बकायदे हमारा एक संवैधानिक संस्थान है, ये सांविधिक संस्थान नहीं है। संवैधानिक संस्थान कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही बकायदे इस बात का प्रोविजन किया गया है कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और आपको चाहिए, अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं, तो इसके अनुच्छेद को भी देख लीजिए कि अनुच्छेद 280 में ये बात कही गई है, देखना चाहिए आपको। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप इस तरह से रिवीजन करते चले जाते हैं तो वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं जो दूसरों के लिए बहुत कठिन होती हैं। संवैधानिक संस्था और सांविधिक संस्था, जो संविधान में जिनका उल्लेख है वो सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जैसे कि वित्त आयोग है, आपका चुनाव आयोग है, हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब के सब हमारे संविधान में निहित संस्थान है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरे हमारे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे मान लीजिए कि चुनाव, आपके इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, तो सूचना आयोग हमारा संवैधानिक संस्थान नहीं है, सांविधिक संस्थान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया और उसके तहत फिर उसकी स्थापना की गई। तो ये सामान्य सी समझ मैं आपको केवल इसके बारे में दे रहा हूं। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, तो इसीलिए आपने न्यूज में सुना कि ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है ये राष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखे प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है ना। अब राष्ट्रपति जो भी इसके साथ बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन आपको यहां एक बात और भी ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने जो भी सिफारिश की है राष्ट्रपति इसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, इसका मतलब यही है कि सरकार बाध्य नहीं है। जो अभी सूचना मिल रही है उसके आधार पर यह लिखा जा रहा है कि इस आयोग ने 41% जो रेवेन्यू है, जो कलेक्शन होता है, जो केंद्र सरकार करती है, उसका 41% राज्यों को देने के लिए कहा है, जबकि इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसने 42% की बात कही थी। तो ये आंकड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहां मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूंगा कि 1993 से राज्यों में भी वित्त आयोग बनाए जाने लगे हैं, खासकर जब हमारा स्थानीय निकायों के बारे में एक्ट आया तो स्थानीय निकायों के लिए, खासकर धन संस्थानों के व्यवस्था के लिए, फिर राज्यों में भी वित्त आयोग गठित किए जाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको वित्त आयोग के बारे में दी है, और इसके साथ ही थोड़ा सा इशारा से ये भी बताया है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। आज आपने एक न्यूज़ अखबारों में पढ़ी होगी कि शेयर बाजार में बहुत तेजी आई, और ये जो तेजी है ये भारतीय शेयर बाजार के बारे में नहीं है बल्कि विश्व के शेयर बाजार के बारे में है, जिसमें यूरोप का भी शेयर बाजार है और अमेरिका के भी शेयर बाजार हैं। ऐसा क्या हो गया? देखिए, इस बीच में दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण घटी। पहला तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया, जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि अमेरिका है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात है तो उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरा, कल जो एक दवा बनाने वाली कंपनी है फाइजर, उसने कहा है कि कोविड के बारे में वो जो वैक्सीन बना रही है कंपनी उनकी, वो 90% सुरक्षित है, 90% सुरक्षित है। अब आपको चाहिए कि आप इसको शेयर बाजार से जोड़ करके देखें। ये मैं तैयारी करने का आपको एक ढंग बता रहा हूं। जोड़ करके देखें कि भाई अगर यह हो गया है तो फिर इससे ऐसा क्या हो गया कि शेयर बाजार में इतनी तेजी आ गई। यूरोप शेयर बाजार आप देखिए काफी 6% बढ़ना बहुत मायने रखता है। अमेरिका के शेयर बाजार जो है वो 4% बढ़ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत के भी शेयर बाजार आज बढ़ेंगे। फिर मजेदार बात यह है कि आप इसी में ये पढ़ रहे हैं कि शेयर बाजार बहुत तेजी से ऊपर उठे, फिर आपको ये भी पढ़ने को मिलता है कि जो सोना है वो सस्ता हो गया, 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना सस्ता हो गया, चांदी के भी रेट गिर गए। तो ये क्या हुआ कि उधर शेयर बाजार बढ़ रहा है, इधर सोने चांदी के रेट घट रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह की बातें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा रुकें और उस पर विचार करें कि भाई ये हुआ क्यों। हो सकता है कि अखबार में ही कहीं आपको मिल जाए ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, और अखबार में चलिए अगर नहीं भी मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी तैयारी हो गई है, समझ विकसित हो गई है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं हमारे ऑनलाइन क्लास के जो पेड स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इकोनॉमिक्स पर वो लेक्चर्स सुन चुके हों तो प्लीज इस पर विचार करें। मैं इसके बारे में अपने तरफ से कुछ भी बताने नहीं जा रहा हूं, और जो दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे, भले ही वो ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट नहीं हैं, उनको भी चाहिए जो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं कि वो इसके बारे में सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है ट्रंपवाद। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने 4 साल में जो भी कुछ किया अमेरिका में, जो नीतियां अपनाई, जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, उसके आधार पर अब एक शब्द निकल गया है, ट्रंपवाद, यानी ट्रंप के विचार, आप इसे कह सकते हैं ट्रंप के विचार। जो ट्रंप के विचार हैं इस पर अब अखबारों में काफी कुछ लिखा जाएगा। शेखर गुप्ता ने भी जो अपना कॉलम लिखा था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि भाई ट्रंप हार गए वो ठीक है, लेकिन ट्रंपवाद नहीं हारा है, वो जीवित है। देखिए, वैसे भी अगर आप सोचें तो ट्रंप हारे जरूर हैं, लेकिन उनको 48% वोट मिले हैं। 48% वोट मिलना कम बड़ी बात नहीं है, यानी कि अभी भी उनके जो भी विचार हैं उसके लगभग आधे लोग, आधे अमेरिकी तो समर्थक हैं ना। 48% ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया है, वाश आउट कर दिया गया है, ऐसा नहीं किया गया। 48% उनके समर्थक हैं। जहां तक हार जीत की बात है तो ठीक है, वो हार गए। इसका मतलब है कि जो ट्रंपवाद है, यानी कि उनके जो विचार हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें इतनी आसानी से उखाड़कर फेंका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जब हम ट्रंपवाद की बात करते हैं तो दरअसल ये है क्यों। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसका महत्व इसलिए है क्योंकि 4 सालों तक ये शब्द आपको हो सकता है कि पढ़ने को मिले, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था तो है ना, जो वैश्वीकरण हुआ है, जो उदारीकरण हुआ, ये खत्म होने नहीं जा रहा है। ट्रंप जरूर उस पर बाधा डाल रहे थे, उसको खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वो ऐसा नहीं करेंगे, लोगों को उम्मीद है वैश्विक व्यवस्था बनी रहेगी। तो बार बार ट्रंपवाद की बात आएगी। तो अब आप देखिए कि जब हम ट्रंपवाद कहते हैं तो वो बेसिकली है क्या। अगर हम पूरी विचारधारा को दो भागों में बांट दें, एक दक्षिणपंथी और दूसरे वामपंथी, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रंपवाद है वो बेसिकली एक दक्षिणपंथी विचारधारा है। आप यूं कह सकते हैं कि एक संकीर्ण विचारधारा है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब हम कहते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा या संकीर्ण विचारधारा, तो मुझे उम्मीद है कि अगर 6 महीने से भी आप मुझे सुन रहे होंगे तो काफी कुछ आप बता देंगे बिना जाने ही कि ट्रंप के क्या विचार थे, कि ट्रंप के ये विचार होंगे, क्योंकि उसका जो बीज है वो आप जानते हैं, जो बेस है वो आप जानते हैं, जिसे मैंने यहां कहा है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी क्या होगा? एक तरफ एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि यह मध्यकालीन विचारधारा है, जिसमें यह होता है कि जैसे अमेरिका में आप देखिए कि श्वेत अश्वेत की अभी इतनी बड़ी बात आई, तो ये अश्वेतों के खिलाफ रंग भेद की नीति आप कह लीजिए, जिसे आप कह लीजिए नस्लवादी विचारधारा, किसी खास नस्ल से नफरत करना या आप कह लीजिए उसके विरोध में खड़ा होना। ट्रंप ने बहुत से ऐसे बीच बीच में स्टेटमेंट दिए हैं जिसे साफ पता लगता है कि महिलाओं के प्रति उनके मन में दुराग्रह का भाव है, महिलाओं को सेकेंड सिटीजन मानते हैं। जो भी उनके देश में बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अप्रवासी हैं, उनको हमेशा वो शक की निगाह से देखते हैं, उन पर वो विश्वास नहीं करते। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर पिछले चुनाव में नारा दिया था कि अमेरिका अमेरिकी वासियों के लिए, यानी कि उनको श्वेत लोगों पर ज्यादा भरोसा है और उसमें भी अमरीकियों पर ही ज्यादा भरोसा है। तो आप देख रहे हैं, अगर अमेरिका अमेरिकियों के लिए है तो फिर वैश्विक व्यवस्था कैसे चलेगी? और इस तरह की उन्होंने नीतियां बाकायदे बनाई, वो बकायदे एक लोकतंत्र में उन्होंने अपने विरोधियों को, जो राजनीतिक विरोधी थे, उनको सीधे सीधे गद्दार कहा कि ये सब राष्ट्रद्रोही है। तो क्या आपको लगता है कि सच में यह स्वीकृत विचारधारा हो सकती है? क्या आप इसका पक्ष लेंगे? फिर आप देखिए कि किस तरीके से जो बहस होती थी, उस बहस में अक्सर आप देखेंगे कि वो उत्तेजित हो जाते थे, बहस को बहुत सही दिशा में नहीं ले जा पाते थे, बहुत से उन्होंने षड्यंत्रों की बात कही लेकिन किसी षड्यंत्र को वो प्रूफ नहीं कर पाए। और खासकर जब कोरोना फैला तो उन्होंने एक प्रकार से जो एक तर्क परक जो बातें होती हैं या जो वैज्ञानिक सोच होती है उसका सीधे सीधे तिरस्कार कर दिया कि नहीं, मास्क की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। और सच पूछिए तो कोरोना ही उनके हार का एक बहुत बड़ा कारण भी बना है। अदरवाइज ये कहा जाता है कि अगर कोरोना नहीं हुआ होता तो ट्रंप दूसरी बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति होते। तो अभी जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी में जो तथ्य बताए हैं, ये ट्रंपवाद है और इनके केंद्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको प्रगतिशील विचार नहीं मिलेंगे, ऐसे विचार नहीं मिलेंगे जो दुनिया को एक दूसरे से जोड़ें। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं ट्रंपवाद। और भले ही सीधे सीधे इस पर प्रश्न न पूछा जाए, लेकिन ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए और अपने पूरे चरित्र के साथ मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सचिन दोलितले, गौरव मेघवाल उदयपुर से, रवि दत्त, प्रीति ठाकुर और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।